अभिमन्यु ने पूरी पार्टी के सामने इशिका को अपनी पत्नी होने का ऐलान कर दिया था। सबूत के तौर पर उसने उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट सबको दिखाया, जिसके बाद कोई उसके रिश्ते पर किसी भी हाल में सवाल नहीं उठा सकता था। हालांकि राजवंश फैमिली को इशिका के अभिमन्यु की पत्नी होने पर दिक्कत थी। प्रशांत राजवंश इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको डिनर पर जाने के लिए कहा, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें वहीं रोक लिया था। वो उस शख्स को सबके सामने पकड़ना चाहता था जिसने उसकी और इशिका की प्राइवेसी का ख्याल ना रखते हुए उनकी प्राइवेट फोटो को इस तरह सबके सामने पब्लिक कर दिया था। जैसे ही अभिमन्यु ने उस शख्स को बुलाकर पुलिस को पकड़वाने की बात कही, आयशा और नक्श ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। आयशा के डर के मारे पसीने छूटने लगे थे। जब उन्होंने ये सब प्लान किया था तब ये कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इसमें पुलिस तक को इन्वॉल्व कर लेगा। नकुल पूरी साजिश के बारे में जानता था, इसलिए वो आगे जाकर अभिमन्यु से बोला, देखो मामले को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ये किसी हाउस हेल्पर की गलती रही होगी, गलतफहमी हो जाती है, इसे आगे बढ़ाकर तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, और वैसे भी सबूत के बिना पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगी। नकुल उसका साथ दे रहा था, ऊपर से जब उन्होंने ये सब प्लान किया था तब वो कैमरे से बचते हुए सब कुछ कर रहे थे। ये सब देखकर आयशा ने राहत की सांस ली। उसने धीरे से नक्श से कहा, जब तक हम अपने मुंह से कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्लीज चुप रहना। नक्श ने उसकी बात पर हामी भरी, लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, आपको किसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? सबूत होने की बात सुनकर आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। अभिमन्यु के पास सबूत थे, इसका मतलब वो पहले से ही इन सब के बारे में जानता था। आयशा कुछ कर पाती उससे पहले अभिमन्यु ने पृथ्वी को इशारा किया। पृथ्वी ने तुरंत ही पीछे के प्रोजेक्टर पर तस्वीर बदल दी थी। वो एक वीडियो था जिसके अंदर आयशा सीसीटीवी कंट्रोल रूम से फुटेज चोरी करके लेकर आई थी, और फिर कुछ हाउस हेल्पर की मदद से उसने वो फोटो प्रोजेक्टर पर स्क्रीन की थी। पार्टी में आए मेहमान अभी भी मौजूद थे और उन्होंने आयशा की हरकत को देखा। नक्श आयशा का साथ दे रहा था लेकिन फुटेज में वो कहीं भी नहीं था, इसीलिए उसने तुरंत आयशा से अपना हाथ छुड़ाया और दो कदम पीछे हो गया था। नक्श, आयशा ने घबरा कर कहा और फिर नक्श की तरफ देखा। नक्श ने मदद के लिए नकुल की तरफ देखा तो उसने तुरंत नामे सिर हिला दिया था, मानो वो उसे इस बात का इशारा कर रहा था कि वो आयशा का साथ ना दे। नक्श आयशा के पास गया और गुस्से में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयशा, इशिका तुम्हारी नाजायज बहन है तो तुम उसका बदला लेने के लिए इस हद तक चली जाओगी कि आज तुमने बड़ी दादी का सेलिब्रेशन तक खराब कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी फैमिली के इश्यूज को राजवंश फैमिली को बीच में लाओगे। आयशा नक्श की इस हरकत पर हैरान रह गई, फिर वो अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, इशिका ने मुझे बताया था कि उसने अपनी शादी अभी रजिस्टर करवाई है, जबकि चाचू की शादी को 2 साल हो गए थे। मुझे लगा कि वो चाचू और आंटी की शादी बर्बाद करना चाहती है। तुम तो जानते हो कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि जो उनके साथ हुआ था वो राजवंश फैमिली के किसी भी मेम्बर के साथ हो, बस इसीलिए मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती थी। आयशा अभी भी सबके सामने मासूम बनने का दिखावा कर रही थी। पार्टी के दौरान नक्श और आयशा ने काफी स्मार्टली इशिका के नाजायज बेटी होने की बात सबके सामने बता दी थी। पार्टी में मौजूद लोगों के मन में काफी सवाल उठ रहे थे, पर वो इशिका को कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि अब वो अभिमन्यु की पत्नी थी। वहां मौजूद हर एक बिजनेसमैन राजवंश एम्पायर से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। अगर राजवंश एम्पायर कोई भी डील कैंसिल करता तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होना था, तो सब चुपचाप वहां खड़े थे। अभिमन्यु को ना तो लोगों से फर्क पड़ता था और ना ही आयशा की सफाई से। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अभिमन्यु ने पुलिस से सख्ती से कहा, उस लड़की ने मेरी और मेरी वाइफ के प्राइवेट मूवमेंट्स को सबके सामने लाकर हमारी प्राइवेसी को इंटरप्ट किया है, आप जानते हैं कि क्या करना है। दो लेडी कांस्टेबल आयशा की तरफ बढ़ी। आयशा ने उम्मीद से राधिका की तरफ देखकर कहा, मॉम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि इशिका और अभिमन्यु चाचू की शादी हुई है, मैं बस इस फैमिली की इज्जत बचाना चाहती थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आयशा की हालत देखकर किसी को दया ना आए, लेकिन उसकी माँ होने की वजह से राधिका उसके साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से इशिका की तरफ देखा। इशिका भी कुछ करना चाहती थी। वो कुछ कहती उससे पहले अभिमन्यु ने उसकी नजरों को समझते हुए कहा, इशिका तुम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकती हो लेकिन मैं नहीं, खासकर तब जब मामला मेरी इमेज और बाकी सब चीजों से जुड़ा हुआ हो। अभिमन्यु ने पुलिस की तरफ इशारा किया और आयशा को वहां से ले जाने लगे। वहां मीडिया भी मौजूद थी और राजवंश खानदान की बहू होने की वजह से आयशा ज्यादा ही लाइमलाइट में आ गई थी, सब उसे कवर करने लगे थे। राधिका इस मामले में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन थोड़ी देर पहले उन्होंने इशिका को थप्पड़ भी मारा था। उन्होंने इशिका से धीरे से कहा, इशिका मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर यकीन नहीं कर रही थी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। राधिका को झुकते हुए देखकर आदर्श ने तुरंत गुस्से में कहा, राधिका तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो, जबकि गलती इसकी है, अगर इसने अभिमन्यु से शादी की थी तो आकर हमें बताना चाहिए था, आफ्टर ऑल हम इसकी फैमिली है, किसी और को ना सही अपने बाप तक को इसने कुछ नहीं बताया। इशिका ने सख्ती से जवाब देते हुए कहा, आप मेरे कुछ नहीं लगते हैं, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, और एक बात याद रखिए, आप मेरे बाप नहीं हैं।
इशिका की बात सुनकर आदर्श और राधिका हैरान रह गए। इशिका बार बार एक ही बात कहती थी कि आदर्श उसके पिता नहीं है। हालांकि राधिका ने उनका डीएनए टेस्ट करवाया था, पर उसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम बचा था। तुम ऐसा क्यों कह रही हो, राधिका ने हैरानी से पूछा। इशिका जवाब में कुछ कहता उससे पहले आदर्श उसकी बातों पर चिढ़ते हुए बोले, तुम मुझे अपना बाप मानने से इनकार कर रही हो, तो मैं भी तुम्हें कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगा। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, और आज के बाद सिंघानिया फैमिली के कोई भी सदस्य के साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हमारे घर के अंदर कदम रखने की भी हिम्मत मत करना। राधिका इस बारे में इशिका से बात करना चाहती थी, लेकिन आदर्श ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। राधिका ज्यादा कुछ तो नहीं कह पाई, लेकिन वो पीछे पलटकर इशिका से बोली, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें अपने जीवन में खुशियां मिलेंगी। थैंक यू मिसेस सिंघानिया, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। उन सब के जाने के बाद और ये ड्रामा खत्म होने के बाद पार्टी फिर से शुरू हो गई थी, और वसुधा भी पार्टी में आई थी। इशिका ने महसूस किया कि अभिमन्यु ने जानबूझकर वसुधा को वहां से हटाया था ताकि ये सब देखकर वो परेशान ना हो। पार्टी के फिर से शुरू हो जाने के बाद कियारा इशिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मुझे पहले से ही पता था कि लोग तुम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तुम अभिमन्यु की पत्नी हो, मिसेस इशिका अभिमन्यु राजवंश हो। इन सब में कियारा ही सबसे ज्यादा खुश थी। शुरू से आखिर तक उसे इशिका पर यकीन था, और वो उसके लिए अपने घर वालों तक से लड़ रही थी। तुम मेरे लिए इतनी खुश हो, इशिका ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, 2 दिन बाद में मेरा भाई भी आ जाएगा। लगता है उसने वो फोटो क्लियर करवा ली है, कियारा ने बताया। इशिका और कियारा बातें कर रहे थे, तभी इशिका की नजर सामने बालकनी की तरफ गई। अभिमन्यु वहां प्रणाली के साथ खड़ा था।
अभिमन्यु को प्रणाली के साथ में देखकर इशिका को अच्छा नहीं लग रहा था। वो ऊपर अभिमन्यु के पास जाना चाहती थी, लेकिन कियारा उसे छोड़ ही नहीं रही थी। कियारा से बातें करते हुए भी इशिका की नजर ऊपर अभिमन्यु पर ही थी। वहीं ऊपर बालकनी में अभिमन्यु प्रणाली से बात कर रहा था। शादी की न्यूज सुनकर वो पूरी तरह टूट गई थी। प्रणाली ने नम आंखों से अभिमन्यु से कहा, तो तुमने सच में उस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अभिमन्यु से बात करते हुए अचानक प्रणाली उसके कंधे पर आ गई थी। शायद वो चक्कर खाकर गिर गई थी। उसे अपने पास देखकर अभिमन्यु ने गुस्से से मुट्ठियां बांध ली थीं। पृथ्वी अभिमन्यु के पीछे ही खड़ा था। उसने पृथ्वी से कहा, जल्दी से गाड़ी तैयार करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। इशिका को भी वहां आने का मौका मिल गया था। उसने महसूस किया कि प्रणाली बेहोश नहीं हुई थी। उसने आंखें खोलकर इशिका की तरफ देखा और तिरछी मुस्कुराहट दी, मानो आंखों ही आंखों में वो उसे चैलेंज कर रही हो कि भले ही उसने अभिमन्यु से शादी कर ली हो, लेकिन वो जब चाहे अभिमन्यु को अपने पास बुला सकती है। इशिका को अभिमन्यु से बात करनी थी, लेकिन अभिमन्यु प्रणाली को गोद में उठाकर उसके पास से निकल गया। प्रणाली को गाड़ी में बिठाते ही उसने पृथ्वी से कहा, मिस कपूर का ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए, और जब तक उन्हें होश ना आए तुम वहीं पर रुक जाना। अभिमन्यु गाड़ी में नहीं बैठा था और वापस पार्टी में आ गया। प्रणाली का मूड ऑफ हो चुका था और उसका प्लान बुरी तरह पिट गया था, लेकिन इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अभिमन्यु उसे छोड़कर कहीं नहीं गया था। इशिका जल्दी से अभिमन्यु के पास आई और बोली, मिस्टर राजवंश, आपको इस बात की सफाई नहीं देनी कि आप उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे और सब उसे ही आपकी वाइफ क्यों समझ रहे थे। क्या आपने उसे किसी तरह का प्रॉमिस किया था? तो तुम्हें जलन हो रही है, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, हाँ, मैंने बचपन में कहा था। बचपन का जिक्र आने पर इशिका के दिमाग में भी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसे भी बचपन में किसी ने वादा किया था कि वो एक दिन उसे लेकर जाएगा, लेकिन आज तक नहीं आया। लेकिन उस एक वादे ने इशिका को हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दे दी। वो यही सोचती थी कि जिस लड़के ने उसे वादा किया था वो एक दिन ज़रूर उसके पास आएगा और उसे इन सब से बाहर निकाल कर ले जाएगा। अचानक इशिका ने अभिमन्यु से पूछा, क्या बचपन में किए बातें बड़े होने पर निभाना ज़रूरी होता है? मैंने भी सोचा था कि अपने बचपन में किए प्रॉमिस को पूरा करूंगा, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। और अब ऐसा क्या हो गया, इशिका ने थोड़ा हैरानी जताते हुए पूछा। अभिमन्यु उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। अपने मॉम डैड की शादी का ये हाल देखकर अभिमन्यु ने कभी शादी को सीरियसली नहीं लिया था। उसने यही सोचा था कि वो किसी भी लड़की से शादी करके उसे मिसेज राजवंश बना देगा, लेकिन इशिका से मिलने के बाद उसकी थिंकिंग पूरी तरह बदल गई थी। वो शादी और प्यार में यकीन करने लगा था। हालांकि उनकी शादी पूरी तरह अजीब तरीके से हुई थी, पर फिर भी अभिमन्यु खुश था कि उसने अपनी शादी निभाई और वो इशिका से मिला। इशिका के सवाल का जवाब देने की बजाय अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलकर दादी से बात करते हैं। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और अंदर चली गई थी। थोड़ी ही देर में पार्टी खत्म हो गई थी और सारे गेस्ट जाने लगे थे। उन सब में मित्तल फैमिली भी मौजूद थी। गाड़ी में बैठते हुए कियारा ने कहा, मुझे वो लड़की प्रणाली कपूर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर उसने इशिका और मिस्टर राजवंश की जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कियारा इशिका को लेकर प्रोटेक्टिव हो रही थी। ये देखकर गौतम और नैना के चेहरे पर स्माइल आ गई। जब वो पार्किंग से अपनी गाड़ी बाहर निकाल कर निकले तो उन्हें एक औरत दिखाई दी। वो मालविका थी, जिसे पहले पार्टी में घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन अंदर जो भी हुआ था उसके बारे में मालविका को पता चल चुका था। मालविका वहां खड़ी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। ये तुमने ठीक नहीं किया इशिका, सिंघानिया फैमिली ने तुम्हें पाला था और उनका एहसान उतारने के बजाय तुमने उन्हीं की बेटी को जेल में भिजवा दिया। तुमने अपनी माँ तक से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे पार्टी में नहीं घुसने दिया। नैना की नज़र मालविका पर चली गई थी और वो जो भी कह रही थी वो उसे सुनाई दे गया था। उसने गाड़ी रुकवाने का कहा। गौतम ने उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुमने अचानक गाड़ी क्यों रुकवा दी? मैंने अभी विंडो खोला तो उस औरत की बात मेरे कानों में पड़ी। वो इशिका की माँ है ना, वो इशिका को भला बुरा कैसे बोल सकती है, और आयशा का फेवर कर रही थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा गौतम, नैना ने परेशान स्वर में कहा। हाँ अजीब तो है, लेकिन तुम क्या करने का सोच रही हो, गौतम ने पूछा, उसकी सच्चाई सबके सामने लाने का, नैना ने जल्दबाजी में कहा और गाड़ी से उतरकर अचानक मालविका के पीछे पहुंच गई। नैना ने मालविका के सामने जाकर सख्ती से कहा, सच सच बताना, आयशा सिंघानिया तुम्हारी बेटी है ना? एक अनजान शख्स से अपनी सच्चाई सुनकर मालविका बुरी तरह चौंक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका सच पकड़ लिया हो।